आज इसी दिवस पर कई साल पहले श्री वराहदेव इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये भगवान का जन्म दिवस है। भगवान के साल में कितने सारे जन्म दिवस, एक व्यक्ति का तो जन्म दिवस साल में एक बार आता है, लेकिन भगवान के कितने सारे हैप्पी बर्थडे मनाए जाते हैं। रामनवमी है, जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, वराह द्वादशी है, वामन देव का आविर्भाव दिवस है, नरसिंह चतुर्दशी है, कितने सारे उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है। यही तो अंतर है हम में और भगवान में। भगवान के अनंत रूप हैं, वो आदि पुरुष हैं, लेकिन फिर भी अपनी कृपा से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर प्रकट होते हैं उनके भक्तों के ऊपर कृपा देने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, भक्तों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम। बार बार समय समय पर भगवान विभिन्न रूपों में यहां प्रकट होते हैं। वराह देव का रूप बड़ा विशेष रूप है, क्योंकि ये पशु समाज में भगवान ने रूप लिया, और वो भी एक शूकर का। एक शूकर बहुत ही नीच जानवर माना जाता है, परंतु जब भगवान किसी भी योनि में किसी भी रूप में प्रकट होते हैं तो वो हमेशा भगवान ही रहते हैं। ये बड़े विडंबना की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में कहती है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन ऋषियादहसु तद अत्यंत विडंबनम। वो कहती है कि हे कृष्ण, ये बड़े विडंबना की बात है, आश्चर्य की बात है, मोहित कर देने वाली बात है कि हालांकि आप अजस्य हैं, मतलब जिनका कोई जन्म नहीं होता, फिर भी आप जन्म लेते हैं। आप अकर्ता हैं, आप कभी भी कोई कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड में आकर आप कर्म करते हैं। हे सारे ब्रह्मांड के आत्मा, विश्वात्मा, आप इस भौतिक जगत में प्रकट होकर अलग अलग योनियों में शामिल होते हैं। तिरियन मतलब जलचर प्राणी, या जलचर नहीं, जो पशु, ये जमीन पर चलने वाले प्राणी, तिरियन पशु, नरी मतलब मनुष्य समाज में, ऋषि ऋषियों के समाज में, और यादहसु मतलब जो जलचर प्राणी है। इन सारे अलग अलग योनियों में आप प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी आप भगवान ही रहते हैं। भगवान ने जब वराह रूप लिया तो पशु समाज में प्रकट हुए, नारायण ऋषि का रूप लिया तो ऋषियों के समाज में प्रकट हुए, जब कृष्ण या राम के रूप में आए मनुष्य समाज में प्रकट हुए, जब मत्स्य अवतार लिया तो जलचर प्राणियों के समाज में प्रकट हुए। लेकिन हमें याद रखना है कि मत्स्य अवतार एक मछली नहीं है, वराह अवतार एक पशु नहीं है, कृष्ण और राम मनुष्य नहीं है, नारायण ऋषि ऋषि नहीं है, ये कौन है? ये सब भगवान है। केवल इन अलग अलग समाजों में, अलग अलग योनियों में प्रकट हुए हैं। ये उनकी लीला है। और जब भगवान अपनी लीला इस तरह से प्रकट करते हैं तो जिस जगह में, जिस स्थान में, जिस समय पर, जिन लोगों के योनि के बीच में वो प्रकट होते हैं, ठीक उन्हीं की तरह वो बर्ताव करते हैं। उनका रहन सहन, उनका रूप, उनका खाना पीना, उठना बैठना, सब उनकी तरह होता है। जब वो ऋषि समाज में नारायण ऋषि बन के आए तो बद्रिकाश्रम में बैठकर बहुत कड़ी तपस्या उन्होंने की। बालों को जटाओं में बांध दिया। इतनी कड़ी तपस्या कि शायद कोई ऐसे ऋषि तपस्या नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो भगवान को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। हम लोग जब तपस्या करते हैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन भगवान को क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है कि उनको तपस्या करना पड़े। जो व्यक्ति कुछ चाहता है, कोई ऊंचा उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है, वो तपस्या करता है। उसके लिए तपस्या उचित है। इस भौतिक जगत में भी लोग तपस्या करते हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है वो भी तपस्या करते हैं किसी भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। तो तपस्या भक्त करते हैं, अभक्त करते हैं, अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। मतलब हमारे अंदर कुछ अभाव है, कुछ कमी है, इसलिए हम तपस्या करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास इस समय नहीं है। परंतु भगवान के पास ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है, तो भगवान को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो ऋषि बन के आए हैं तो जैसे ऋषियों को करना चाहिए वैसा करते हैं, और इतने सुंदर ढंग से करते हैं कि सारे ऋषियों के लिए एक आदर्श हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब वो मछलियों के, जलचर प्राणियों के योनि में प्रकट होते हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार के समय, तो वो मछली नहीं है लेकिन मछलियों के समाज में आए हैं तो जल में चलते रहते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, ये भी मनुष्य समाज में आए। भगवान कृष्ण का और एक नाम है जननिवास। मतलब जो साधारण जनों में, लोगों में निवास करते हैं। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। जय जयकार हो, जय हो उस भगवान कृष्ण का जिनको जननिवास कहते हैं, जो देवकी नंदन है, देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जननिवास मतलब जो साधारण जनों के बीच में, लोगों के बीच में निवास कर रहे हैं, मानो कि वो भी एक साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन इतना होते हुए वो अपने भगवान के अस्तित्व को त्यागते नहीं है। कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, और भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। तो जो व्यक्ति जन निवास है, जनों के बीच में निवास करते हैं, वो जनों के लिए निवास भी रहते हैं। मतलब ये जन निवास शब्द का दूसरा अर्थ है कि सारे जनों के लिए वो निवास या आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण वो व्यक्ति हैं जो सारे प्राणियों को आश्रय दे सकते हैं। वो सारे प्राणियों के, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मूलाधार हैं। इस तरह से जन निवास के दोनों अर्थ हो सकते हैं। एक कि वो साधारण मनुष्य है, ऐसे प्रतीत होता है कि वो साधारण मनुष्य है, लेकिन ऐसे होते हुए भी सारे मनुष्यों के आधार हैं, उनके आश्रय हैं। तो ठीक उसी तरह से जब भगवान श्री कृष्ण ने वराहदेव का रूप धारण किया, शुकर रूप धारण किया, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ये एक प्राणी है, ये स्वयं भगवान है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता ये रूप या वो रूप, ये योनि या वो योनि। हर रूप उनका पूरी तरह से दिव्य है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है और हरेक रूप में उनकी शक्ति उनकी क्षमता उतनी ही होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व, तो जब वो बाल लीला कर रहे थे उन्होंने कई भयानक असुरों का वध किया, जैसे कि पूतना, तृणावर्त इत्यादि। और उस समय जबकि पूतना का वध उन्होंने किया या तृणावर्त का, तो भगवान श्री कृष्ण चल भी नहीं सकते थे, इतने छोटे बच्चे थे, 1 साल भी नहीं हुई थी उनकी उम्र। तो हमें लग सकता है कि 1 साल का बच्चा वो इतने बड़े असुर का वध कैसे कर सकता है, लेकिन जो बाल कृष्ण थे 1 साल के उम्र वाले, और जो श्री कृष्ण थे जिन्होंने नरकासुर का वध किया, जिन्होंने शाल्व का वध किया, जिन्होंने शिशुपाल का वध किया, जो कि अर्जुन के साथ सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित थे, इन दोनों कृष्णों की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही श्री कृष्ण बाल रूप में लीला का आनंद लेने के लिए प्रकट हुए। तो बाल कृष्ण की शक्ति उतनी ही है, उनकी क्षमता उतनी ही है जितना कि द्वारकाधीश कृष्ण की है। ठीक उसी तरह से जिस योनि में भी भगवान प्रकट होते हैं उस योनि में उस रूप में भगवान की शक्ति उतनी ही रहती है, अपार, अतुल्य, असीमित। ये है भगवान शब्द का अर्थ। तो भगवान वराहदेव के रूप में प्रकट हुए एक विशेष कार्य संपन्न करने के लिए। भगवान के जो अलग अलग अवतार होते हैं इस ब्रह्मांड में, वो कोई न कोई विशेष कार्य संपन्न करने हेतु ही आते हैं। ऐसा कोई अवतार नहीं होता भगवान का जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, यूं ही चले आए नहीं, यूं ही नहीं आते भगवान। भगवान कोई विशेष कार्य करने आते हैं। तो वराहदेव कौन सा कार्य संपन्न करने आए? पृथ्वी माता वैसे अपने कक्ष से बाहर हटकर ब्रह्मांड के भीतर, ब्रह्मांड के नीचे जो गर्भोदक सागर है उसमें गिर पड़ी थी। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि यह ब्रह्मांड एक अंडे के बराबर है, ब्रह्म अंड, और इस अंडे के भीतर 14 भुवन हैं, नीचे 7 और ऊपर 7 अलग अलग तरह के लोक हैं, ग्रह, और इनके नीचे आधे ब्रह्मांड को भरते हुए एक सागर है जिसको गर्भोदक सागर कहते हैं, गर्भ उदक सागर। और इस सागर के ऊपर, अनंत शेष के ऊपर शयन कर रहे होते हैं भगवान गर्भोदकशायी विष्णु। उनकी नाभि से कमल पुष्प आता है और उस कमल के डंडी में सारे 14 भुवन स्थित होते हैं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पृथ्वी या अन्य जो लोक होते हैं नीचे के, वो अपने कक्ष से हट जाते हैं और नीचे गर्भोदक सागर में गिर जाते हैं। भगवान ने हरेक लोक में, ग्रह में उनकी अचिंत्य शक्ति प्रदान कर दी है, जिससे कि ये सारे लोक या ग्रह अपने अपने कक्षा में घूम सकते हैं। जैसे पृथ्वी इस ब्रह्मांड के अंदर घूम रही है, कैसे घूम रही है, क्यों गिरती नहीं है? हम जब एक गेंद फेंकते हैं तो वह गेंद वापस नीचे आ जाता है, गोल गोल घूमते नहीं रहता, तो क्यों? ऐसी कौन सी शक्ति पृथ्वी में है जो कि पृथ्वी को गोल गोल अपने कक्षा में घुमा रही है? वो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, ओजस शक्ति। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान कहते हैं मेरे ओजस शक्ति से ही ये सारे ग्रह या लोक अपने अपने कक्षा में स्थित हैं और वो घूमते रहते हैं। तो कई तरह के अवस्थाएं जब उपस्थित होती हैं तब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम सकती है। जब ये अवस्थाओं में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है तो पृथ्वी वहां से निहट जाती है और नीचे गिर जाती है। तो समय समय पर ऐसे होता है कि जो इस ब्रह्मांड के भीतर असुर होते हैं वो इतने अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, उत्पात करते हैं और पृथ्वी माता को इतना कष्ट देते हैं कि पृथ्वी माता को अपनी कक्षा में स्थित रखने वाले जो अवस्थाएं हैं वो उनमें गड़बड़ी आने के कारण पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिर जाती है। वैसे ब्रह्मा जी के आयु के समय कई बार ऐसे होता है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, उनके दूत हैं, उनके भक्त हैं। भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि की रचना करते करते उनको भी कभी कभी वो भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये क्या करना चाहिए। फिर उनको ध्यान करना पड़ता है भगवान के ऊपर। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी जितना बड़ा भी क्यों ना हो, कितना योग्य भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी अपने निहित कार्य करने में कभी कभी भ्रमित हो जाता है। तो ब्रह्मा जी से हमें सीखना चाहिए। हमारे दिनचर्या में, हमारे दैनिक कार्यों में अगर हम भ्रमित हो जाते हैं तो हमें भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी, उनकी आयु 100 साल की होती है, लेकिन ये 100 साल उनके 100 साल हैं, हमारे 100 साल नहीं। उनके 100 साल हमारे करोड़ों साल हो जाते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिवस मतलब ये 12 घंटे ये 1000 चतुर्युग हैं। चतुर्युग मतलब 4 युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। इन 4 युगों को 1 चतुर्युग कहते हैं। तो जब ये चतुर्युग 1000 बार आते जाते हैं तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो जाते हैं, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिवस। तो सोच लीजिए ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है, लाखों लाखों साल हमारे साल, उनके 12 घंटे, और उनका एक दिवस, इसका भी विभाजन किया गया है। इसमें 14 भाग हैं उनके एक दिवस में और हर एक दिवस को एक मनु के अंतर का समय कहते हैं, मनवंतर, क्योंकि हर एक भाग में, इन 14 भागों में हर एक भागों में एक व्यक्ति रहता है जिसको मनु कहते हैं, जो कि ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करता है और इस ब्रह्मांड को संभालता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि हैं, उसी तरह से मनु ये ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि हैं। जैसे ब्रह्मा जी भगवान का कार्य करते हैं, उसी तरह से मनु ब्रह्मा जी का कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिवस में ऐसे 14 मनु होते हैं और हर एक मनु के जीवन के अवधि को मनवंतर कहते हैं। तो ब्रह्मा जी, जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं, इस समय उनके 50 साल पूरे हो गए, मतलब उनके 50 साल, हमारे तो करोड़ों साल बीत गए। और उनके 50 साल के बाद ये पहला दिन है, उनका 50वां जन्म दिवस होने के बाद ये पहला दिन, मतलब समझिए कि कल उनका जन्म दिवस और आज का दिन चल रहा है। 50वें साल के पहले बाद में जो पहला साल है उसका पहला दिन चल रहा है। और इस पहले दिवस में भी हर दिवस की तरह 14 मनु होते हैं, लेकिन अब तक 7वां मनु यहां पर राज कर रहे हैं, मतलब करीब करीब ब्रह्मा जी का मध्याह्न का समय हो गया है, दोपहर का समय हो गया है। ब्रह्मा जी शायद भोजन कर रहे होंगे, अपना प्रसाद ले रहे होंगे इस समय शायद। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु हो जाते हैं और इस दिवस में सात मनु आ गए हैं। पहले छह आए और चले गए, अब सातवें मनु हैं, जो सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र हैं। इनका नाम है वैवस्वत मनु। पहले मनु का नाम है स्वयं भुव मनु, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। फिर स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चक्षुषा और वैवस्वत, ये पहले सात मनु। अब साधारणतः भगवान के जो अलग अलग रूप रहते हैं, इतने विभिन्न अवतार रहते हैं, वो ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार आते हैं। जैसे एक फैक्ट्री का मालिक, अगर उसके कई फैक्ट्री हो, कारखाने हो, तो हर एक फैक्ट्री में एक दिन में एक बार जाएगा, 10 मिनट के लिए एक फैक्ट्री में जाएगा, फिर उधर से दूसरे कारखाने में जाएगा, वहां 10 मिनट देखेगा सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, फिर तीसरे कारखाने में जाएगा। तो समझ लीजिए, अगर कोई आदमी हो जिसको जिसके बहुत सारे कारखाने हो, तो वो थोड़े थोड़े समय के लिए हर एक कारखाने में जाता है। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण, उनके अनंत कोटि ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, और वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वहां जाते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। इस तरह से हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार आते हैं। प्रभु रामचंद्र ब्रह्मा जी के एक बार एक दिवस में आते हैं, श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, वामन देव इत्यादि जितने भी अवतार हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि भगवान के कोई अवतार ब्रह्मा के एक दिवस में दो बार भी आते हैं। उनमें से वरह अवतार ऐसे हैं, भगवान के शुक्र रूप ने ब्रह्मा जी के इस एक दिवस में, मतलब अभी तो केवल आधा दिवस बीत गया है ब्रह्मा जी का, इस आधे दिन में वरहदेव अभी तक दो बार आ भी चुके हैं। पहली बार पहले मन्वंतर में, जिसको स्वयं भुव मन्वंतर कहते हैं, और छठे मन्वंतर में, जिसको चाक्षुष मन्वंतर कहते हैं, चक्षु का मन्वंतर, क्योंकि उनका नाम था चक्षु, चक्षु के पुत्र चाक्षुष। तो इस तरह से दो बार वरहदेव ये ब्रह्मांड में प्रकट हो चुके हैं। पहली बार उनका रंग श्वेत था, श्वेत कांति, इसलिए इस कल्प को कभी कभी श्वेत वराह कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिवस को कल्प कहते हैं, यह शब्द है संस्कृत भाषा में कल्प। तो इस कल्प को श्वेत वराह कल्प कहते हैं। और छठे मन्वंतर में, मतलब चाक्षुष मनु के समय, वो लाल रंग से प्रकट हुए हैं, वही भगवान वराह, लेकिन अलग अलग रंग से प्रकट हुए। तो देखिए भगवान की लीला, जैसे कभी कभी, हालांकि एक फैक्ट्री का मालिक हर फैक्ट्री में एक बार जाता है, लेकिन हो सकता है कोई एक फैक्ट्री का मालिक सोचे कि चलो इस फैक्ट्री में दो बार जाना पड़े, जरूरी काम है, सुबह को भी जाएंगे शाम को भी जाएंगे। ठीक उसी तरह से वराहदेव दो बार आ गए हैं। तो श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर रूप से मैत्रेय मुनि विदुर को सुनाते हैं कि किस तरह से वराहदेव यहां पर प्रकट हुए। वास्तव में वो प्रकट हुए दो बार, परंतु मैत्रेय मुनि ने दोनों घटनाओं को एक में मिलाकर कह दिया विदुर जी को, लेकिन फिर भी हम अलग अलग से इन घटनाओं का वर्णन संक्षेप में करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज उनका आविर्भाव दिवस है। तो हुआ ये कि जब ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए और उनकी रात आ गई, तो जैसे कि हर दिवस के अंत में होता है ब्रह्मा जी का, वो सो गए। और जब ब्रह्मा जी रात को सो जाते हैं, तो ये 14 भुवन जो हैं, इनमें से केवल ऊपर के 3 जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रह जाते हैं, बाकी जितने भी 11 भुवन हैं वो सब पानी में डूब जाते हैं, प्रलय, महाप्रलय हो जाता है। और ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में केवल ऊपर के 3 लोक रह जाते हैं, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। इन तीन लोकों में, ग्रहों में केवल वही लोग रहते हैं जो ब्रह्मांड के सबसे पुण्यवान लोग हैं। तो हुआ यह था कि जब ब्रह्मा जी नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि नया दिन शुरू हो गया है, पहला दिन है, पहला मनवंतर है। तो उन्होंने एक मनु को उत्पन्न किया, क्योंकि मनु तो चाहिए। मनु शब्द से आता है मनुष्य, मानव। तो मनु पैदा हो गए, और क्योंकि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनका नाम है स्वयंभुव। ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए, जिनके कोई भौतिक माता पिता नहीं है। ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से निकलते हुए कमल पुष्प के ऊपर हुआ, इसलिए भौतिक दृष्टि से उनके कोई माता पिता नहीं है, इसलिए उनको स्वयं भू कहते हैं, जो स्वयं प्रकट हुए। तो स्वयं भू ब्रह्मा जी के पुत्र, उनका नाम स्वयं भुव मनु। और साथ साथ और एक स्त्री भी उत्पन्न हुई, एक पुरुष और एक स्त्री। ब्रह्मा जी ने पहली बार इन दो मनुष्यों को उत्पन्न किया, स्वयं भुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा। तो दोनों जब प्रकट हुए तो हाथ जोड़कर स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के सामने आए और निवेदन कहने लगे कि हे पिता, हे गुरु, आप तो सारे प्राणियों के निवास स्थान हैं, आश्रय हैं, आप ही सबका भरण पोषण करते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं वो सब आपसे आते हैं। तो कृपया हमें आदेश दीजिए कि हम आपकी सेवा किस तरह से कर सकते हैं, हमारे लिए क्या आदेश है आपका, किस तरह से आपको प्रसन्न कर सकते हैं, हमारे निहित कर्तव्य इस समय क्या हैं। ब्रह्मा जी ने जब यह सुना तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वो कहने लगे, मैं तुम्हारी नम्रता से, तुम्हारी शरणागति की भावना से बड़ा प्रसन्न हूं। मैं हृदय से तुम्हें पूरा आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन धन्य हो। ठीक इसी तरह से एक पुत्र को पिता के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। इस तरह से सारे वातावरण में एक शुभ चीज उत्पन्न हो जाती है, शुभता हो जाती है। तो मेरा आदेश तुम्हारे लिए यह है कि सबसे पहले ब्रह्मांड में प्रजा की उत्पत्ति करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रलय के बाद सारे नीचे के लोक इनका संहार हो गया। तो अभी सबसे पहले प्रजा की उत्पत्ति के कार्य में लग जाओ, साथ साथ धर्म के अनुसार इस प्रजा के ऊपर राज करो, सबको भगवान श्री हरि के भक्ति मार्ग में लगाओ, धर्म परायण राजा बनो और अपने कार्यों के माध्यम से यज्ञ करो, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करो। भगवान जनार्दन का रूप लेते हैं यज्ञ के फल को स्वीकार करने के लिए, इसलिए खुद भक्ति करते हुए अपनी प्रजा को भक्ति में लगाते हुए प्रजा का संरक्षण करो। और जो व्यक्ति इस तरह से जीता है और धन की रक्षा करता है, उससे उसके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो और हमें प्राप्त करने के लिए क्या रह जाता है। तो मनु ने फिर से हाथ जोड़ा और कहा कि हे पिताजी, जो आप कहते हैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन हम करेंगे, परंतु हमें केवल ये बताइए कि हमारे लिए और जिन संतानों की उत्पत्ति हम करेंगे उनके लिए निवास स्थान कौन सा होगा, हम कहां रहेंगे। और दूसरी समस्या ये है कि जिस लोक को हमें संभालना है, पृथ्वी लोक, हम देख रहे हैं कि वो गर्भोदक सागर में डूब गई है। तो कृपया पृथ्वी को गर्भोदक सागर से, उस जल से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढें। जब ब्रह्मा जी ने यह सोचा, ये सुना, तो बड़े सोच में रह गए। उन्होंने सोचा कि अरे ये कैसे हो गया, कैसे ये पृथ्वी नीचे गिर गई। काफी समय तक सोचते रहे, फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस ब्रह्मांड के भीतर हर एक कार्य हम अपने आप से नहीं कर सकते। हर अवस्था में हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं, और जब भी हम भ्रमित हो जाते हैं तो हमें परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उनकी कृपा याचना करनी चाहिए, फिर हम सारे कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से ब्रह्मा जी जैसे गहरे विचार में थे, एक अद्भुत घटना हुई कि ब्रह्मा जी के नसिकों में से एक छोटा सा रूप बाहर आया और नसिकाओं के बाहर आकर वो उनके सामने आया। और वो क्या था? एक प्राणी था, शूकर रूप। और जैसे ही वो बाहर आए, धीरे 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 जल्दी बड़े 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 हो गए, और बहुत ही जल्दी इतने बड़े हो गए कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी के साथ में उनके कई ऋषि पुत्र थे, जैसे मरीचि, कश्यप, मनु और अन्य कई ब्राह्मण थे। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे ये कौन है? ब्रह्मा जी भी बड़े सोच विचार में पड़ गए, किम एतत् शूकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम, ये कौन है? ये कोई विशेष अद्भुत दिव्य प्राणी लगता है जिसने कि शूकर का रूप धारण किया है। अहो बत आश्चर्यम इदम नासायमे विनिसृतम, अहो बत आश्चर्यम, अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, नासायमे विनिसृतम, मेरे नसिकों से बाहर आया, ये कौन सा प्राणी है, ये कौन है? ब्रह्मा जी को इतना आश्चर्य हुआ, सोचने लगे, दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणात गंड शिला समह, जब वो प्रकट हुए मेरे नसिकाओं के बाहर, केवल अंगुष्ठ का प्रमाण था उनका, अंगूठे का प्रमाण, और क्षणाद एक क्षण में एक महान पर्वत की तरह उनका आकार हो गया, उनकी लंबाई चौड़ाई हो गई, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अपिस्वित भगवान एष यज्ञ, क्या ये भगवान विष्णु तो नहीं? इस तरह से ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे। मैं खेदयन मनः, मेरा मन तो विचलित हो गया है कि ये कौन है, इनका परिचय क्या है, सोचते सोचते। फिर जैसे ही ब्रह्मा जी इस तरह से सोच रहे थे, वराहदेव जो कि स्वयं भगवान हैं, सबके हृदय में स्थित हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी के मन की बात जान ली। देखिए भगवान हमारे हृदय में भी हैं, तो हमारे मन की बात भी जानते हैं, आत्मा के बहुत करीब बैठे हैं परमात्मा, इसलिए हमारे हर छोटे मन की बात को भगवान जानते हैं। भगवान से हम कोई भी चीज कोई भी विचार छुपा नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के विचारों को भगवान समझ गए। भगवान ने सोचा, मेरे प्रिय भक्त ब्रह्मा जी थोड़े विचलित हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूं, संशय है कि मैं विष्णु हूं, लेकिन निश्चित रूप से नहीं जान रहे हैं। तो बहुत जोर से गर्जना उन्होंने की, क्योंकि शूकर रूप में थे ना, शूकर अवस्था में गर्जना काफी जोर से करते हैं पशु, आपने कहीं देखा होगा, तो वृंदावन में ऐसे बहुत पशु हैं, तो देखेंगे बीच बीच में वो घुर घुर आवाज करते रहते हैं। लेकिन जब भगवान ने ये रूप धारण किया, इतना विशाल विराट रूप जो कि सत्यलोक से सारे ब्रह्मांड भर में फैल गया, इतना बड़ा कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर ब्रह्मा जी स्वयं भ्रमित हो गए तो हम समझ सकते हैं कि हमारे कल्पना के कितने बाहर है। तो विशाल रूप को देखा, और भगवान ने यह विशाल रूप धारण करके शूकर का रूप बड़े जोर से गर्जना की, और उस गर्जना को ऐसे किया उन्होंने कि मानो वो ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो आप सोच रहे हैं वो सही है, मैं वही हूं जो आप सोच रहे हैं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। और फिर सारे जो वहां के ऋषि मुनि ब्राह्मण थे, जनलोक तपलोक और सत्यलोक के, उनको और आश्वासन दिलाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, दोबारा भगवान ने
वराहदेव के रूप में गर्जना की बड़े जोर से। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इतने भीषण गर्जना से जनलोक तपलोक सत्यलोक के निवासी और ब्रह्मा जी डरे नहीं, क्योंकि एक बार भक्त भगवान को पहचान लेता है फिर डरता नहीं है। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने पहचान लिया कि ये मेरे भगवान हैं, मेरे प्रिय आराध्य देव हैं, लेकिन ये अद्भुत रूप धारण करके आए हैं। और उस समय जनलोक तपलोक सत्यलोक के निवासी वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगे, माना कि वो आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान से। भगवान ने गर्जना की और ये जो ऋषि मुनि थे इन्होंने वेदों का मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। और ये भी उपयुक्त था, क्यों? क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि जो वेद हैं, वेद शास्त्र या जो आदि ज्ञान है जिसको वेद कहते हैं, वो भगवान नारायण के श्वास से उत्पन्न हुआ और इस श्वास को, इस हवा को ब्रह्मा जी ने अंदर सांस लिया। कहने का मतलब है कि वो वेद के पहले शिष्य थे, विद्यार्थी थे, और जब ब्रह्मा जी ने सांस बाहर लिया तो भगवान शुक्र रूप में, वराह रूप में बाहर आए। इसका मतलब है कि वराहदेव वेदों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इसलिए ये उपयुक्त था कि जनलोक तपलोक सत्यलोक के निवासी वेदों के मंत्रों का उच्चारण करें, भगवान का गुणगान कर रहे थे। ये सब अलग अलग तरह के मंत्र बोल रहे थे, भगवान इनके मंत्रों को सुनकर इनकी उपासना आराधना को स्वीकार करने लगे अपने कृपा कटाक्ष से, अपने कृपा दृष्टि उनके ऊपर बरसाई। केवल थोड़ा सा देखा झुककर उनकी ओर और अपने दृष्टि से ही आशीर्वाद दिया उनको। भगवान अपने शरीर के हर एक अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं। कृपा दृष्टि देनी, कृपा देनी है तो केवल अपने आंखों से दे सकते हैं। केवल दृष्टि अगर उनकी हमारे ऊपर लग जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उन्होंने इन सारे ऋषि मुनियों के ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान की और फिर एक हाथी की तरह खेलते हुए वो नीचे ब्रह्मांड के नीचे भाग में गर्भोदक सागर की तरफ उड़ते गए, बड़े तेजी से चले गए वहां पर। और इस समय शुकदेव गोस्वामी या मैत्रेय मुनि बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि जो सुंदर दृश्य जनलोक तपलोक सत्यलोक के निवासी देख रहे थे। मान लीजिए कि हम जब आकाश में, सोच लीजिए कि एक बड़ा विमान है जो यहां आ रहा है और यहां मंदिर के सामने लैंड हो रहा है, हम सब खड़े होकर कैसे देखेंगे इतना बड़ा विमान आ रहा है। तो सारे ब्रह्मांड ने वराहदेव का रूप केवल इन तीन लोकों के निवासियों में देखा, क्योंकि अन्य लोक तो थे ही नहीं, वो सब प्रलय जल में डूब गए थे। तो बड़े आश्चर्यचकित होकर बड़े प्रेम से ये सारे ऋषिगण ब्राह्मण मुनि इत्यादि देख रहे थे कि वराहदेव का विशाल रूप उड़ रहा है बड़े तेजी से और पूंछ हिला रहे हैं, बड़े तेजी से पूंछ हिला रहे हैं। उनके रोंगटे खड़े हुए, रोम रोमांच, और बड़े कड़क रोम हैं उनके, और इस तरह से अपने खुरों से, अपने पूंछ से बादलों को इतर तितर कर रहे हैं। और दोबारा जब उन्होंने वेदों के मंत्र बोले तो भगवान बोलना चाहते थे कि मैं तुम्हारी उपासना स्वीकार करता हूं, क्योंकि वो शुक्र रूप में थे तो किस तरह से स्वीकार कर सकते थे, गर्जना करके। तो तीसरी बार वराहदेव ने जोर से गर्जना की और उस समय सारे ऋषियों को पता चला कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, सुन ली है। और फिर बड़े तेज गति से, जोर से वो आए गर्भोदक सागर में और उन्होंने वहां पर प्रवेश किया। इतने जोर से विस्फोट जैसे हो गया और गर्भोदक सागर को प्राय उन्होंने आधा कर दिया। उनके बाएं ओर और दाहिने ओर पानी इतना ऊंचा निकल आया कि ऐसे प्रतीत हो रहा था कि गर्भोदक सागर के दो बड़े भुजाएं हैं और वो हाथ ऊपर कर रहे हैं और कह रहे हैं बचाइए बचाइए और हमारा विभाजन मत कीजिए। मान लीजिए कि वो कृपा याचना कर रहे हैं और इस तरह से सीधे गर्भोदक सागर के नीचे तक गए। हालांकि गर्भोदक सागर बहुत विशाल है और उसका जो उसकी सीमा है उसको पाना बहुत कठिन है, प्राय असंभव है, लेकिन भगवान के लिए क्या कठिन या असंभव है। सीधे वो नीचे पहुंच गए और वहां पर पृथ्वी को उन्होंने देखा और बड़े आसानी से अपने दंष्ट्रों में, वराह के शुकर रूप में दो दंष्ट्र होते हैं, दांत होते हैं, पृथ्वी माता को वहां उनके ऊपर रखा और धीरे से बाहर आए। और बाहर आकर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति पृथ्वी माता में प्रदान कर दी और पृथ्वी माता को जल के ऊपर रख दिया। इस तरह से पृथ्वी माता को फिर से अपनी कक्षा में भगवान ने स्थित कर दिया। सारे देवी देवता जो है बड़े प्रसन्न हो गए। देवी देवता मतलब जनलोक तपलोक सत्यलोक के, क्योंकि स्वर्गलोक भी महर्लोक भी अभी तक नहीं आया था। तो सारे ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे भगवान का। इस तरह से वराह देव ने अपना चमत्कार दिखाया। तो प्रश्न ये आता है कि भगवान ने ऐसा अद्भुत रूप क्यों लिया। कोई भी रूप ले सकते थे लेकिन शुकर का ही रूप क्यों लिया। आचार्य बताते हैं कि जब कोई गंदी जगह से कुछ चीज लाना होता है तो शुकर ही वहां जाता है। आपने शुकरों को देखा होगा, हमेशा अपने नाक से ढूंढते रहते हैं गंदी जगह में कुछ न कुछ खाने का पदार्थ चाहिए उनको। इसलिए क्योंकि पृथ्वी माता गर्भोदक सागर में एकदम नीचे बिल्कुल गई थी, इसलिए उन्होंने शुकर का रूप लिया। और जैसे वो जल के अंदर गए तो पृथ्वी को ढूंढ रहे थे, कैसे, अपने नाकों से, अपने नाक से सूंघते हुए। आपने पशुओं को देखा होगा, पशुओं के गुण क्या होते हैं, जब किसी चीज को ढूंढना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो अपने नाक से करते हैं, सांस लेते रहते हैं। कभी आपने कुत्तों को भी देखा होगा, पहले सूंघेंगे किसी चीज को, कोई भी पशु हो, पहले सूंघते हैं फिर चखते हैं। सूंघने के बाद उनको गंध अगर सही लगा वो समझ जाते हैं, उनकी नाक जो है बहुत तेज होता है। अगर उनको ठीक लगता है फिर वो खाते रहे, नहीं तो नहीं खाते। तो उसी तरह से भगवान ने एक पशु का रूप लिया था, शुकर का, तो उन्होंने अपने नाकों से जैसे पशु करता है वैसे किया, ढूंढते ढूंढते पृथ्वी को ढूंढ निकाला और ऊपर लाए। और जब बाहर आए भगवान का रूप बड़ा सुंदर लग रहा था, मानो कि तमाल वृक्ष की तरह है, चमक रहे थे वो। इस तरह से वराहदेव भगवान पहली बार ब्रह्मा जी के इस दिवस में प्रकट हुए। श्री वराहदेव भगवान की जय। लेकिन वराहदेव और एक बार भी प्रकट हुए और वो है छठे मन्वंतर, चक्षुष मन्वंतर में। ये हुआ स्वयंभू मन्वंतर के समय। तो हुआ ये कि वराहदेव के पहले प्राकट्य के कई लाखों लाखों साल बीत गए। पहले पांच मनु आए और चले गए, फिर छठे मनु आए जिनका नाम था चाक्षुष मनु। और उस समय हुआ ये कि अचानक देवी देवता देख रहे थे कि ये अंधकार यहां पर क्यों फैल गया है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मा जी, हमारा मन थोड़ा विचलित हो गया है कि अचानक सारे ब्रह्मांड में ये अंधकार क्यों फैल गया, इसका कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इसके पीछे एक इतिहास है। इतिहास ये है कि जब मेरे चार वरिष्ठ पुत्र, चार चतुष्कुमार, वो वैकुंठ में गए थे तो उन्होंने वैकुंठ के दो द्वारपाल जय और विजय को शाप दिया था और भगवान ने भी इसको अनुमति दी थी। और अब ये जय और विजय को शाप मिलने की वजह उनको यहां पर इस ब्रह्मांड में तीन जन्मों तक असुरों का शरीर धारण करना पड़ेगा। बड़े भयंकर भीषण असुर होने वाले हैं ये। और इस समय ये दोनों असुर प्रकट हो ही रहे हैं, इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं। और ये दिति जो कि कश्यप ऋषि की पत्नी है, उनके गर्भ से प्रकट होने वाले हैं ये दो बच्चे। इस वक्त अभी ये दिति के गर्भ में है, जुड़वे भाई हैं। कश्यप मुनि, उनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति अदिति जो है वो सारे देवताओं की माता है, इसलिए देवताओं को कभी आदित्य भी कहते हैं। और दिति सारे असुरों की, इसलिए असुरों का और एक नाम है दैत्य, देवता और दैत्य। तो इस तरह से दिति के गर्भ में ये बच्चे 100 साल तक रहे, देवताओं के 100 साल वो गर्भवती रही, बच्चे प्रकट नहीं हुए, क्योंकि दिति घबरा रही थी कि जो भविष्यवाणी हुई है कि मेरे बच्चे भयंकर असुर होंगे, तो घबरा रही थी बाहर आएंगे तो क्या करेंगे। जब उन दोनों बच्चों का प्रकट होने का समय आया तो सारे ब्रह्मांड में जगह जगह तरह तरह के अशुभ लक्षण दिखाई पड़े। किस तरह के अशुभ लक्षण? अंधकार फैल गया था, सब जगह बहुत ही डरावनी हवा बह रही थी, तरह तरह के आवाज करते हुए, शुं शुं, जैसे हम देखते हैं तूफान के समय कैसे हवा चलती है, सब लोग डर जाते हैं हवा के आवाज से, ऐसी आवाज चल रहे थे। और हवा इतनी तेज बह रही थी कि पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रही थी। कहीं ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि गधे चीख चीख कर नाच रहे हैं, पैरों को इधर उधर पीट रहे हैं कि क्या होगा। और उस समय अशुभ क्षण के समय दो व्यक्तियों का जन्म हुआ। जब भगवान या कोई ऋषि जन्म लेते हैं तो शुभ क्षण पर जन्म लेते हैं, सबसे शुभ क्षण। लेकिन ऐसे असुर जब जन्म लेते हैं तो सबसे अशुभ क्षण में, चुन के सबसे अशुभ क्षण में इन दो भाइयों का जन्म हुआ। पहले दिति के गर्भ से बाहर आए हिरण्याक्ष, और दूसरे तुरंत उनके पीछे पीछे आए हिरण्यकश्यप। तो पहले बाहर निकले हिरण्याक्ष, तो वैसे तो उनको बड़ा भाई मानना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में बताया है जहां जब जुड़वे भाई होते हैं, जो भाई पहले बाहर आता है मां के गर्भ से वो छोटा भाई है, और जो बाद में आता है वो बड़ा बच्चा होता है। तो इस तरह से हिरण्याक्ष पहले आए और पीछे पीछे हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप बड़े भाई, हिरण्याक्ष छोटे भाई। और जब बाहर आए तो बहुत ही जल्दी उनका शरीर बड़ा हो गया, थोड़े ही समय में इतना विराट शरीर हो गया उनको, मानो कि उनका उनके जो किरीट हैं वो बादलों को छू रहे हैं। और भी आगे बढ़ते रहे, पर्वत के समान मजबूत उनका शरीर हो गया, वज्र की तरह मजबूत, इतनी शक्ति इतना तेज उनके अंदर था कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाया। हिरण्याक्ष जो कि छोटा भाई था, वो अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप का अच्छा सेवक बन गया, और जैसे बड़े भाई की इच्छा थी वैसे पूरी करते थे, हर तरह से बड़े भाई की सेवा करने के लिए वो आतुर रहता था। तो अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप को प्रसन्न करने के लिए हिरण्याक्ष ब्रह्मांड भर में घूमने लगा, सारे देवताओं के पास गया, देवलोक में गया, स्वर्ग लोक में गया, और सारे देवता भी अपने अपने स्थानों से भाग गए, क्योंकि वो हिरण्याक्ष से इतना घबराते थे। अपना गदा और अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए ब्रह्मांड को, सारे ब्रह्मांड को हिरण्याक्ष ने अपने वश में कर लिया। जाकर लोगों को युद्ध में ललकारता था, लेकिन सभी लोग जानते थे कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए सभी लोग हिरण्याक्ष के डर के मारे भाग जाते और जगह जगह छुप जाते। फिर हिरण्याक्ष ने सोचा, अभी मुझे समुद्र में जाना चाहिए, समुद्र के पीछे अंदर जाकर कई सालों तक अपने गदा से वो जो लहरें हैं समुद्र का उनको पीटते रहे और जाते 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 नीचे लोकों में पहुंच गए विभावरी स्थान में, जो कि वरुण देव की राजधानी है। वरुण देव न केवल जलचर प्राणियों के देव हैं, परंतु जितने भी नीचे लोक हैं, रसातल पाताल इत्यादि, उनके भी अधिष्ठाता देव हैं। तो हिरण्याक्ष विभावरी में जाकर वरुण देव के सामने आए और वरुण देव का अपमान करना चाहते थे, इसलिए बड़े मजाक में आकर झूठे झूठे नम्रता का स्थान लिया, उनको दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, कृपा करके मुझे युद्ध दें, युद्ध में मेरा सामना करें। आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आप इतने सारे लोगों के स्वामी हैं, तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए, युद्ध कीजिए मेरे साथ में। तो वरुण देव को समझ में आया कि इस हिरण्याक्ष के हृदय में इतना घमंड है। उन्होंने कहा, हालांकि बहुत गुस्सा हो गए थे, लेकिन अपने क्रोध को शमन कर दिया और कहने लगे कि देखो हे हिरण्याक्ष, तुम्हारा सामना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं और आजकल मैं युद्ध नहीं कर सकता और कोई देवी देवता तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा मुकाबला करने वाला बराबर के व्यक्ति हैं और वो है विष्णु। तो विष्णु के पास जाओ, सही प्रतिद्वंद भी तुम्हें मिलेगा और वहां उनका सामना करो और थोड़ी ही देर में तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा और थोड़े समय में तुम युद्ध भूमि पे तुम्हारा शव पड़ा रहेगा और उसके इर्द गिर्द कुत्ते रहेंगे, ये तुम्हारी दशा होने वाली है, जाओ। तो हिरण्याक्ष ने हंसने लगा, सोचने लगा, चलो देखते हैं ये विष्णु कहां पर है। ये विष्णु वही व्यक्ति है जो हमारे शत्रु देवताओं की रक्षा करता है, हमेशा उनका पक्षपात करता है, हम असुरों के खिलाफ रहता है, चलो विष्णु को ढूंढ लेते हैं। अगर आपको विष्णु को ढूंढना है तो आप किसको पूछेंगे? आप अगर कोई जगह जाना चाहते हैं तो आप कोई पुलिस के आदमी को पूछेंगे, कोई रास्ते में जाने वाले आदमी को पूछेंगे, ये स्थान कहां है, वो जगह कहां है। अगर आपको भगवान विष्णु को ढूंढना है, विष्णु कहां है, आप किसको पूछेंगे? भक्त को पूछेंगे ना। कहीं जाकर सड़क पे किसी आदमी को पूछेंगे विष्णु कहां है, वो सोचेगा पागल है। लेकिन कोई भक्त को पूछेंगे विष्णु कहां है, तुरंत बताएंगे, हाँ आइए हम बताएंगे विष्णु कहां है, भगवान कहां है। तो वो जानता था हिरण्याक्ष कि भगवान विष्णु का महान भक्त है नारद मुनि। तो नारद मुनि के पास गए, हे नारद जी, बताओ आपके स्वामी कहां है। तो नारद ने बताया कि अभी अभी हमारे प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठा रहे हैं, मतलब दूसरी बार चाक्षुष मनु के समय भी पृथ्वी लोक गर्भोदक सागर में गिर पड़ी थी। तो जैसे ही वराहदेव, मतलब दूसरी बार वराह के रूप में जब प्रकट हुए थे भगवान, वो पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाल ही रहे थे, उस समय वहां पर हिरण्याक्ष आ पहुंचा और देखा कि हाँ देखो, ये है विष्णु, यही है वो व्यक्ति जो हमारे शत्रु हैं, इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो कि हमारा देवताओं का पक्षपात करते हैं और असुरों के विरुद्ध हैं, तो आओ हमारे साथ युद्ध करो। तो उस समय बहुत कटु वचन सुनने के बाद वराह देव के हृदय में ये कटु वचन तीरों के समान चुभ गए। देखिए, भगवान भी हम सब की तरह एक व्यक्ति है, हालांकि उनकी शक्ति में कोई सीमा नहीं है, फिर भी वो एक व्यक्ति हैं, उनकी भी भावनाएं हैं। जैसे हमारे प्रति, हमारे लिए भी कोई अगर कोई कटु वचन कहेगा तो हमें बुरा लगता है, हमारी भावनाओं को चोट लगता है। ठीक उसी तरह से जब हिरण्याक्ष ने ऐसे कटु वचन कहे तो भगवान की भावनाओं को चोट पहुंची, लेकिन उन्होंने सोचा, मेरा कर्तव्य मुझे पहले करना चाहिए, मेरा कर्तव्य इस समय है, मैं पृथ्वी माता को बचा रहा हूं, गर्भोधक सागर से बाहर निकाल रहा हूं। तो वराहदेव ने परवाह नहीं की हिरण्याक्ष की और सीधे अपने कार्य में आगे चलते रहे, और पीछे से उनको ललकारते हुए हिरण्याक्ष आ रहा था। अरे देखो तो सही, इतना बड़ा है ये योद्धा कि रणभूमि से भाग के जा रहा है, ऐसे बीच बीच में कटु वचन बोल रहा था। वराहदेव ने सोचा कि सबसे पहले मेरा कर्तव्य है पृथ्वी को बचाना। फिर जब बाहर आए तो सागर के ऊपर, जल के ऊपर पृथ्वी देवी को उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान करके स्थित कर दी। अपने दंष्ट्रों से उन्होंने पृथ्वी को धारण किया था और वहां पे जल के ऊपर रख दिया और फिर घूमे हिरण्याक्ष का सामना करने के लिए, और कहने लगे जो वीर पुरुष होते हैं वो ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो कार्य करते हैं। तुम तो केवल बात कर सकते हो, अगर कुछ कर सकते हो और अपनी जान प्रिय है तो फिर करो, देखते हैं। ऐसे युद्ध में दोनों ललकार रहे थे एक दूसरे को। युद्ध आदमी केवल तब कर सकता है जब वो गुस्सा है, गुस्सा है ना, हसमुख चेहरे से कोई युद्ध नहीं कर सकता है, बराबर है। तो युद्ध में ऐसी प्रथा होती थी कि जो भी योद्धा थे वो एक दूसरे को कटु वचन बोल बोल के उकसाते थे, गरम करते थे, अपमानित करते थे ताकि और गुस्सा हो जाए उसे, फिर युद्ध जो है वो बड़ा जबरदस्त हो जाता था। तो भगवान उनको क्या लीलाओं की कोई कमी है, उनको क्या जगह वहां कम पड़ा है गोलोक धाम में, उनको क्या कोई और दूसरा काम नहीं है कि इधर आके लड़ाई करें? नहीं, भगवान जब लड़ाई करते हैं तो वो भी इस लीला का स्वाद उठाना चाहते हैं। हमारे अंदर युद्ध करने की प्रवृत्ति क्यों है? आजकल ये प्रवृत्ति सब जगह ज्यादा दिखाई पड़ती है, झगड़ा करने की, युद्ध करने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये प्रवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में है, इसलिए हमारे अंदर भी है, हम तो उनके अंश हैं। लेकिन जब भगवान इस प्रवृत्ति को बाहर निकालते हैं, युद्ध करते हैं, तो उसमें एक मिठास होता है, और इस युद्ध को देखने के लिए सारे देवलोक से ऋषि मुनि एकत्र होते हैं, जैसे इस बार भी हुए थे। भगवान के इस सुंदर युद्ध को देखने से, बल्कि इसके बारे में सुनने से भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, और जिस व्यक्ति की हत्या या वध भगवान करते हैं उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। ये अंतर है भगवान के युद्ध में और हमारे युद्ध में। भगवान जब युद्ध करते हैं तो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होते हैं, लेकिन हम लोग जब युद्ध करते हैं हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में करते हैं, लेकिन भगवान सदैव इन तीन गुणों के परे रहते हैं। इस तरह से वराहदेव और हिरण्याक्ष के बीच में भीषण युद्ध आरंभ हो गया, गदा युद्ध, एक दूसरे के ऊपर जोरदार आक्रमण करने लगे। और जब आक्रमण किया, प्रहार किया अपने गदे से हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर, तो भगवान ने आसानी से अपना शरीर हिलाया और गदा उनको लगा नहीं। फिर भगवान ने गदा चलाया, हिरण्याक्ष हिले, उनको भी लगा नहीं। फिर दोनों गदाओं के बीच में टक्कर, भीषण युद्ध होने लगा। डर डर के सारे देवता देख रहे थे क्या हो रहा है, और एक दूसरे को ललकारते ललकारते युद्ध कर रहे थे। काफी समय तक युद्ध चलते रहा। उधर देवी देवता काफी चिंतित होने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, बहुत समय बीत गया, अब जल्दी से इस खतरनाक असुर को खत्म कर दीजिए, क्योंकि दोपहर से अभिजीत, जो कि बहुत शुभ और पावन समय है, वो आरंभ हो गया है और थोड़ी ही समय में ये समाप्त होने वाला है, और इसके बाद में जो राक्षसी या असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसे खत्म कर दीजिए। ये भक्तों की भावना रहती है। हालांकि भक्त जानते हैं कि भगवान को कौन कोई हानि पहुंचा सकता है, भगवान को कौन मार सकता है, वो तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी प्रेम का ये लक्षण होता है कि व्यक्ति सोचता है प्रेम से कि भगवान को कुछ होना नहीं चाहिए। इस वृंदावन में भी ब्रजवासी हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतित रहते थे, सोचते थे कृष्ण को कोई हानि नहीं हो, कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं करे। माता यशोदा, नंद महाराज, अन्य गोप गोपियां नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते, नाना प्रकार के कवच वगैरह पहनाते तो कृष्ण का संरक्षण हो जाए, नाना प्रकार के पूजा करते। अपने प्रेम से वो ये भूल जाते कि भगवान श्री कृष्ण को कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि भगवान की बात दूर है, उनको भी कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि कृष्ण है उनके साथ में। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा और थोड़े मिनट जल्दी से थोड़ा लीला कर लूं, फिर उनको मार दूंगा। फिर उस समय जब हिरण्याक्ष ने आक्रमण किया तो भगवान के हाथ से गदा नीचे गिर गया। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं कि मानो जो सामने वाला योद्धा है वो भी उनके बराबर का है। अगर ऐसा नहीं हो तो युद्ध में क्या मजा आएगा। जब बराबर के योद्धा होते हैं तब युद्ध युद्ध कहलाता है, नहीं तो युद्ध नहीं। ये युद्ध का एक नियम रहता है। जब जरासंध के पास भीम, अर्जुन और कृष्ण गए थे और उन्होंने चुनौती दी उनको कि चलिए आपसे युद्ध करना है हमें, तो जरासंध ने कहा मैं कृष्ण के साथ युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था और मेरे से उम्र में कम है, अर्जुन वो भी मेरे उम्र में कम है, ये मेरे लिए बराबर का युद्ध नहीं होगा। लेकिन भीम उम्र से भी बराबर है और शक्ति में भी मेरे से बराबर है, इसलिए मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। इस तरह से जरासंध और भीम के साथ के बीच में युद्ध हुआ और भीम ने जरासंध को मार दिया। तो इसी तरह से वराहदेव ने देखा कि बराबर का युद्ध होना चाहिए, तो उनकी उन्होंने लीला की, अपने हाथों से उनका गदा छोड़ दिया और ब्रह्मांड के ऊंचे भाग से वो भीषण जो गदा है वो घूमते घूमते चमकता चमकता हुआ वो नीचे गिरा गर्भोदक सागर की ओर। हिरण्याक्ष क्षत्रिय युद्ध के नियमों का पालन कर रहा था उस समय भी, उस समय उन्होंने आक्रमण नहीं किया। और भगवान ने सोचा बहुत अच्छा, देखो युद्ध के समय भी इतना असुर होते हुए भी नीति का पालन कर रहा है, क्योंकि ऐसा एक नियम है कि जब योद्धा के पास कोई अस्त्र नहीं होता तो उसको उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण वराहदेव के रूप में आक्रमण करने लगे उनके साथ। फिर जब सुदर्शन चक्र उठाया भगवान ने तो उस समय हिरण्याक्ष ने जोर से अपना गदा उनकी ओर फेंक दिया। भगवान ने आसानी से अपने खुरों से उसको लात मार के उड़ा दिया। फिर से हिरण्याक्ष ने उस गदे को पकड़ा, फिर से जोर से फेंका भगवान की ओर, भगवान ने फिर से अपने खुरों से उसको पकड़ लिया, जैसे कि गरुड़ एक सांप को पकड़ता है, जैसे बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है, आसानी इस गदे को पकड़ लिया जैसे कि एक खिलौना है। और उस समय बहुत उत्तेजित हो गया हिरण्याक्ष, जोर से आक्रमण किया और अपने भुजाओं में पकड़ के चूर चूर करने का प्रयत्न किया। लेकिन जब वो आया तो वराहदेव तुरंत उनके बाहर आ गए और वो सोचने लगा अरे इधर थे कहां चले गए भगवान। फिर वराहदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हिरण्याक्ष ने नाना प्रकार के जादू टोने आरंभ किए, ओझल हो गए, अदृश्य हो गया और जगह जगह से नाना गंदी चीजें फेंकने लगा, अस्त्र शस्त्र जगह जगह से आने लगे, अंधकार हो गया, बादल छा गए। इसको माया युद्ध कहते हैं। जैसे इंद्रजीत जब जो कि रावण के पुत्र थे उन्होंने भी ये माया युद्ध किया भगवान रामचंद्र के सेना के विरुद्ध, लेकिन भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और ये माया को खत्म कर दिया, चूर चूर कर दिया। और फिर भगवान ने आसानी से अपने पंजे से, अपने करकमलों से हिरण्याक्ष के कान के नीचे हल्का सा थप्पड़ मार दिया। भगवान के लिए हल्का सा थप्पड़ था लेकिन हिरण्याक्ष के लिए ऐसा था कि मानो 1000 वज्र एक साथ उनके लग गए हों, और उनका सर घूम गया और खून बहते बहते वो नीचे गिर गए जमीन पर और देह त्याग दिया। और फिर ऊपर से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार किया, बोलो वराहदेव भगवान की जय। इस तरह से वराहदेव दूसरी बार प्रकट हुए और न केवल पृथ्वी माता को बचाया परंतु उन्होंने हिरण्याक्ष का वध भी किया। और जब पानी से बाहर आए भगवान वराहदेव, तो जैसे आदमी स्नान करके बाहर निकलता है तालाब से, तो कभी कभी अपने बालों को सूखा करता है या शरीर हिलाता है। आपने पशुओं को देखा होगा, कुत्तों को खास करके जब गीले हो जाते हैं तो क्या करते हैं, शरीर को हिलाते हैं। तो भगवान ने भी अपना शरीर हिलाया, तो गीला था शरीर, पानी के बूंद इधर उधर गिर पड़े और ये बूंद जो है वो उनके देवताओं के ऊपर आए, ऋषि मुनिगणों के ऊपर। और उन्होंने सोचा हाँ हमारा जीवन पावन हो गया। और उनके जो रोम है वो भी बारहिष्मती नाम का शहर जो कि स्वयंभू मनु की राजधानी थी वहां पड़ गया, और उससे कुश और कश घास उत्पन्न हुआ। ये कुश घास जो है ये धार्मिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुश घास का इतिहास ये है कि वराहदेव के रोम से ये उत्पन्न हुआ। और फिर ये सब ऋषि मुनिगण प्रार्थना करने लगे भगवान से कि हे भगवान, हमारा जीवन धन्य हो गया है कि आपने हमें इस तरह से दर्शन दिया, आपने इस तरह से पृथ्वी माता को उठाया है गर्भोदक सागर से कि जैसे एक हाथी एक तालाब से कमल पुष्प को पत्तों के साथ उठाता है, इतने आसानी से आपने उठाया। जिस तरह से कभी कभी एक पर्वत के शिखर को बादल घेर लेते हैं और वो बहुत सुंदर दिखता है, ठीक उसी तरह से जब आप पृथ्वी माता को अपने दंष्ट्रों पर स्थित करके उठा रहे थे उसी तरह से ये दृश्य लग रहा था। आप पिता हैं और पृथ्वी ये आपकी पत्नी है, इसलिए हमारे लिए माता है। और आपके दिव्य शरीर के ऊपर जो पानी के बूंद हैं वो आपने छिड़का दिए हमारे ऊपर, तो हमारा जीवन धन्य हो गया है। तो भगवान के शरीर से जो पानी या जल आप गिर पड़ा वहां पर, वो गंगा जी के समान है। क्यों? जब भगवान ने वामन देव का रूप लिया था तो विरजास का जल जो है वो ब्रह्मांड के भीतर आ गया। और क्योंकि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए वो जल आया, इसलिए वो जल चरणामृत कहलाता है। इसलिए गंगा जी का जल चरणामृत है। परंतु वराहदेव के शरीर को जो पानी ने स्पर्श किया वो भी गंगा जी के बराबर है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में और भगवान के शरीर के किसी दूसरे अंग में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान वराहदेव ने सारे ब्रह्मांड में गंगा जल फैला दिया, सबका अभिषेक करा दिया गंगा जल से। इस तरह से जनलोक तपलोक सत्यलोक के निवासी भगवान का गुणगान करते रहे, उनके प्रति सुंदर स्तुति अर्पण करते रहे, और फिर भगवान वराहदेव अपने धाम में लौटकर चले गए। इस तरह से भगवान का सुंदर आविर्भाव हुआ। आज इस दिवस पर हम वराहदेव की प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पृथ्वी माता को नीचे के जगह से उठाया, जो गंदी जगह मानी जाती है, और उसको सही अपने कक्षा में स्थित कर दिया, और ये करते करते उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, ठीक उसी तरह से वो हमारी चेतना को, जो कि इस समय भौतिक विषयों में गंदे विषयों में लगी हुई है, उसको वहां से उठाए। और जो हमारे हृदय में असुर राक्षस हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, उनको मारे नष्ट करे। और हमारी कक्षा में, मतलब हमारे स्वरूप में हम स्थित करें। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन हम इस बात को भूल चुके हैं क्योंकि हमारे हृदय में इतनी सारे अन्य भौतिक इच्छाएं हैं। तो वराहदेव से हम आज प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने जन्म दिवस पर ज्यादा कृपा बरसाते हैं। जैसे कि कोई साधारण व्यक्ति भी अपने जन्म दिवस पर ज्यादा उदार हृदय का हो जाता है। तो आज वराहदेव से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय को वो शुद्ध करें, जो भी मल हमारे हृदय में है उसको नष्ट करें, इन राक्षसों को, इन अनर्थ रूपी राक्षसों का वध करें और हमें कृष्ण भक्ति के अमृत का पान वो कराएं और हमेशा उनके चरण कमलों में हमें स्थित रखे। श्री वराहदेव भगवान की जय। श्री वराहदेव आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है कि क्योंकि हिरण्याक्ष ज्यादा सोना के लिए खुदाई कर रहा था इसलिए पृथ्वी माता वह नीचे गिर पड़ी। वैसे यह भी सही है, जो दो बार वराहदेव प्रकट हुए दोनों बार पृथ्वी माता गर्भोदक सागर में थी, लेकिन दोनों बार पृथ्वी के नीचे गिरने का कारण अलग था। पहली बार तो ब्रह्मा जी के रात्रि के समय जैसे स्वाभाविक तौर से होता है उसलिए पृथ्वी माता नीचे गिर पड़ी थी। दूसरी बार चाक्षुष मनवंतर के समय, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति के लोग जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बहुत उत्पात कर रहे थे, उग्र कर्म कर रहे थे। जैसे प्रवचन में हम कह रहे थे कि कोई ग्रह या लोक अपनी कक्षा में तब स्थित रह सकता है जब कोई अमुक व्यवस्थाएं या अवस्थाएं विद्यमान हो। अगर उन अवस्थाओं में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वो ग्रह या लोक अपनी कक्षा में स्थित रह नहीं पाता है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो जमीन में खुदाई करना, बहुत गहराई में जाकर तेल निकालना और सोना निकालने के लिए बहुत कुछ, डायनामाइट बम विस्फोट करना, ये सब उग्र कर्म है। ऐसे सब कार्य हम करते हैं तो पृथ्वी के कक्षा में जो संतुलित अवस्था है उसमें वो चल विचल हो जाता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो हिरण्यकश्यप इसी तरह से खुदाई करते थे। जैसे आजकल लोग तेल निकालने के लिए बहुत गहराई में जमीन में जाते हैं, मीलों भी अंदर जाते हैं, बम विस्फोट करते हैं, इसको उग्र कर्म कहते हैं। तो इसकी वजह से पृथ्वी अपनी कक्षा से हिलकर नीचे गिर पड़ी थी। ठीक है। प्रश्न यह है कि वृंदावन में कई सारे ऐसे सुअर दिखाई पड़ते हैं, अन्य पशु भी हैं जैसे बंदर हैं, कुत्ते हैं, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये वृंदावन के सुअर हैं इसलिए इनको सुअर देव कहते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो प्राणी है वृंदावन के, ये कौन है? ये किसी पिछले जन्म में वृंदावन के ही निवासी थे, ब्रजवासी थे। वृंदावन में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन वृंदावन में जन्म लेने के बाद भी बहुत सारे पाप उन्होंने किए, इसलिए भगवान ने उनको दंड दिया है। एक जन्म उनको या तो सुअर का रूप, या तो कुत्ते का रूप, या तो बंदर का रूप दिया है, ये योनि में जन्म दिया है, ताकि जितने भी सारे पाप किए हों पिछले जन्म में वृंदावन में उनका दंड उनको मिल जाए और इस जन्म में फिर आखिर पापों को खत्म करके वो वापस भगवान के धाम में चले जाए, या कम से कम उन्हें और एक अच्छा अवसर मिले भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ये भगवान के रूप नहीं माने जाते हैं, ये केवल जीवात्मा है जो पिछले जन्मों में धाम के निवासी थे। और कोई प्रश्न किसी के? हाँ जी, प्रश्न ये है कि जब दशावतार, इन 10 तरह के अवतार रूपों में जब भगवान अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा जी के हर दिवस में एक बार होता है या चतुर्युग में होता है? नहीं नहीं, ये ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार होता है, मतलब 1000 चतुर्युग में एक बार। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, वराहदेव दो बार आए, लेकिन साधारणतः 1000 चतुर्युग में एक बार। ये जो भी दशावतार हैं, ये हरेक अवतार ज्यादातर 1000 चतुर्युग में एक बार यहां प्रकट होते हैं। तो देख लीजिए हमारा कितना सौभाग्य है, भगवान कृष्ण केवल 5000 वर्ष पूर्व आए, ब्रह्मा जी के एक दिवस में 1000 चतुर्युग में एक बार आते हैं और वो हमसे केवल 5000 साल पहले। और भी हमारा कितना सौभाग्य है कि वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो कि सबसे बड़े कृपालु रूप है भगवान के, वो हमसे केवल 500 साल पहले आए। फिर भी हम मंदिर में आने के बजाय हम वर्ल्ड कप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। इतना सौभाग्य हमारा होते हुए नहीं, आजकल सारे दुनिया यही इसके पीछे पागल हो गई है, बराबर है।